नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण। तो कल हम चैतन्य महाप्रभु की लीला कीर्तन लीला तक वर्णन किया था कि महाप्रभु श्रीवास अंगन में श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन हरिनाम कीर्तन शुरू किया। चांदकाजी कीर्तन बंद करने का कोशिश किया था, बल्कि महाप्रभु जाकर चांदकाजी के साथ मुकाबला किया, चर्चा किया और चांदकाजी यद्यपि वो था मुसलमान काजी, मतलब वहां का गवर्नर, बल्कि चांदकाजी भी चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन गए थे। और चांदकाजी का वंशज अब भी मायापुर में है। चांदकाजी का डिसेंडेंट, ऑल्दो देर मुस्लिम्स, देर वेजिटेरियन, the generation, see 500 years, for 500 years the generations there vegetarians and they are devotees of Chaitanya Mahaprabhu. In the courtyard, in the house of Srivas Thakur, many wonderful things happened. Srivas Angan mein bahut kirtan ke aadhar par बहुत सुंदर लीलाएं महाप्रभु प्रकाश किए थे। एक दिन महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन कैसे होता था, बहुत सारे आदमी वहां इकट्ठा हो गए थे, इकट्ठा होकर सब कीर्तन करते थे। इकट्ठा होकर सब कीर्तन करते थे और सारा रात भर उन्होंने एवरीबॉडी प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन और पुट इट इन साइलेंट मोड, रात भर कीर्तन होता। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कीर्तन में आज मन नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है कि कीर्तन रस में मैं मगन नहीं हो रहा हूं, इसका कारण क्या हो सकता है। तब रात को दो पहर, अढ़ाई पहर, अढ़ाई पहर का मतलब होता है लगभग डेढ़ बजे, किसी ने बताया कि श्रीवास ठाकुर का लड़का का मृत्यु हो गया है। तो महाप्रभु ने ऐसा हुआ, श्रीवास ठाकुर सुना अंदर से, घर के अंदर आंगन में कीर्तन होता था, तो श्रीवास ठाकुर का पुत्र का मृत्यु हो गया, बच्चा था उसका मृत्यु हो गया। तो श्रीवास ठाकुर ने सबको बताया कि तुम लोग रो मत, क्योंकि अगर महाप्रभु को पता चलेगा कि मेरा लड़का का मृत्यु हुआ है तो महाप्रभु कीर्तन बंद कर देंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि कीर्तन बंद हो, तो तुम लोग मत रो। इसलिए सब, यद्यपि ऐसे कितना कष्ट होता है किसी को मृत्यु होने से, बच्चे का मृत्यु होने से मां का कितना कष्ट होता है और सारे सजनों का कितना कष्ट होता है, बल्कि सब ये कष्ट सहन किया महाप्रभु के वास्ते। श्रीवास ठाकुर ने निर्देश दिया कि रो मत, बल्कि महाप्रभु का पता चला की कीर्तन महाप्रभु को पता चला कि ये बच्चा का मृत्यु हो गया है। तो महाप्रभु तो बोला, तुम श्रीवास को बुलाया कि श्रीवास तुम्हारा बच्चा का मृत्यु हुआ और तू हमें नहीं बताया। तो श्रीवास ने बोला कि मेरे ऐसे सारे बच्चा का मृत्यु हो जाए कोई कुछ खेद नहीं है, खेद नहीं रहेगा, बल्कि आपका कीर्तन अगर बंद हो ये मैं नहीं चाहता। तो महाप्रभु ने श्रीवास को बोला, ये कैसी मनोभाव है तुम्हारा कि तुम अपने बच्चों को भी मृत्यु में भी तुम्हारा कोई वैसे व्याकुलता नहीं है। श्रीवास ने बताया नहीं। तो महाप्रभु ने घर के अंदर गया तो बच्चा को पूछा, वो जो उसका शरीर पड़ा हुआ था बच्चा का, तुम क्यों तुम्हारे पिता को छोड़कर चले जा रहे थे, कहां जा रहे थे? तो वो यद्यपि मृत्यु हुआ था, मौत हुआ, मरा हुआ था, बल्कि वो बच्चा को फिर से प्राण वापस आ गया। वो बैठ गया और बैठ के वो पूछने लगा, आप कौन से पिता के बारे में कह रहे हैं? मेरे तो कितने सारे पिता थे, कौन पिता के बारे में आप कह रहे हैं कि मैं उनको छोड़ के जा रहा हूं? और अब मेरा ये जीवन का जो असल कार्य जो था वो समाप्त तो हो गया है, संपन्न हो गया है, मैं अब आप ही के पास वापस जा रहा हूं, मुझे और फिर से बुलाइए मत यहां पर, मैं मेरा असल घर में वापस जा रहा हूं। तो ये एक बहुत सुंदर लीला श्रीवास अंगन में हुआ था। इसके पश्चात महाप्रभु के उम्र जब 24 साल का हुआ, तब 24 साल की उम्र में श्री चैतन्य महाप्रभु घर छोड़कर चले गए सन्यास लेने के लिए केशव भारती के पास। नवद्वीप से करीब 20 किलोमीटर होगा, कटवा नाम की एक जगह है, कटवा में केशव भारती रहते थे, एक महान सन्यासी। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके वहां गए। जब सबको पता लगा कि महाप्रभु घर छोड़कर चले गए, तब सब रोने लगा। तो नित्यानंद प्रभु और चार भक्तों को लेकर, गदाधर, मुकुंद, ब्रह्मानंद और चंद्रशेखर को लेकर, उनको पता था कि महाप्रभु ने शायद केशव भारती के पास सन्यास लेने का तय किए हैं। तो केशव भारती के वहां गए। महाप्रभु वहां पहले से पहुंच गए थे। नित्यानंद प्रभु और भक्तगणों को देखकर महाप्रभु प्रसन्न हुए, बोले तुम लोग आया, अच्छा हुआ। और वहां उसके पश्चात हरिदास ठाकुर भी वहां आ गए। आप सन्यास ले, महाप्रभु के सन्यास के पश्चात महाप्रभु स्थिर किया वृंदावन जाने के लिए, और महाप्रभु वहां से चले, चल पड़े। केवल चल पड़े नहीं, पैदल नहीं, चल पड़े, दौड़ने लगा, और पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु, गदाधर, मुकुंद और चंद्रशेखर भी उनके पीछा किया चलने। ऐसे 3 दिन महाप्रभु लगातार दौड़ते रहा और पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु और भी सब दौड़ने लगा। बल्कि नित्यानंद प्रभु को इच्छा था कि महाप्रभु को फिर से नवद्वीप में वापस लाए, नवद्वीप में नहीं, शांतिपुर में। शांतिपुर कौन देखा है? शांतिपुर नवद्वीप से करीब 30 किलोमीटर हुआ मायापुर से, 30 किलोमीटर। तो शांतिपुर में लाने का इरादा किया। तो मां ऐसा नित्यानंद प्रभु को प्रभाव से, माया की प्रभाव से, जोग माया की प्रभाव से महाप्रभु ऐसे ही घूमते रहे। सीधा वृंदावन जाने का इच्छा था, बल्कि उन्होंने ऐसे चक्कर लगाते हुए 3 दिन वही रार देश में, जो वहां से लगभग ऐसे 40-50 किलोमीटर तक, ऐसे 40-50 किलोमीटर रास्ता में ऐसे ही घूमते रहा। तो आ गए हैं थे काटवा अंबिका कालना में, जो शांतिपुर के अलग पार में है, गंगा के इस पार में है शांतिपुर और उस पार में है कालना। तो कालना की वहां जब आया तो चैतन्य महाप्रभु देखा कुछ ग्वाल बाल गाय चरा रहे हैं और हरिनाम भी कर रहे हैं। तो महाप्रभु ये देखते हुए ही उनको पूछा, ये जगह क्या है? नित्यानंद प्रभु बच्चे लोग को सिखाया था, जब आकर पूछेंगे तो बोलना कि ये वृंदावन है। और तो महाप्रभु पूछा, बच्चे बोले ये वृंदावन है। और नित्यानंद प्रभु तब बताया, नित्यानंद हम वृंदावन पहुंच गया? तो नित्यानंद प्रभु बोला हाँ हाँ वृंदावन पहुंच गए। और चैतन्य महाप्रभु ने तब पूछा, ये क्या यमुना है? नित्यानंद प्रभु बोला हाँ ये गंगा सागर होगा, ये यमुना है। तो यमुना को महिमा कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु नदी में गए नहाने। और नित्यानंद प्रभु पहले ही चंद्रशेखर आचार्य को भेजे थे जाकर अद्वैत आचार्य को बोलना कि एक नाव लेके इस पार में आने की। ये सारे नित्यानंद प्रभु का प्लान था। तो नाव लेके इस पार आने के लिए, तो जब चैतन्य महाप्रभु नहा रहे थे तो अद्वैत आचार्य नाव लेके वहां पहुंच गए। तो देखते ही चैतन्य महाप्रभु बोला, अद्वैत तो तुम भी यहां आ गए हो। तो अद्वैत तो बोला हाँ आप जहां रहते हैं वही मेरा गंतव्य स्थल है। और बल्कि बाद में चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि नित्यानंद प्रभु ने उनको धोखा दिया कि ये जो जगह जो है ये शांतिपुर है वृंदावन नहीं, और ये गंगा है यमुना नहीं। तो महाप्रभु को बहुत गुस्सा हुआ, मैं संन्यास लिया, तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं मजाक कर रहा हूं? मैं वृंदावन जाना चाहा और तुम लोग हमको यहां पर लाए हो शांतिपुर में। तो अद्वैत आचार्य ने तब उनको बताया कि जहां आप हो वही स्थान वृंदावन है। और प्रयाग में गंगा और यमुना का संगम होने के बाद पश्चिम तट में यमुना बह रही है और पूर्व तट में गंगा बह रही है। गंगा और यमुना ऐसे साथ साथ बह रही है, एक साइड में यमुना बह रही है, एक साइड में गंगा बह रही है। क्योंकि ये पश्चिम साइड का है तो इसलिए आप यमुना में ही नहाए हैं। तो अद्वैत आचार्य नाव से उन सबको ले गया और चंद्रशेखर आचार्य नवद्वीप गए, मायापुर गए, वहां सची माता को संवाद दिया कि चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर में आए हैं। ये खबर मिलती ही सारे मायापुर वासी नवद्वीप वासी सब आ गए। केवल एक रमणी नहीं आई, वो थी विष्णुप्रिया, महाप्रभु की पत्नी, क्योंकि संन्यास के पश्चात पत्नी के साथ संपर्क नहीं रखना चाहिए, पत्नी को दर्शन भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए पत्नी विष्णुप्रिया देवी केवल नहीं आई थी, बाकी सारे नवद्वीप वहां थे। चैतन्य महाप्रभु के साथ सची माता का मिलन हुआ, सची माता रोने लगी। ये स्थिति बहुत ही करुण था। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 साल के नौजवान संन्यास ले लिया और घर में और कोई पुरुष नहीं था, घर में केवल सची माता जिनकी उम्र उस समय 60 से भी अधिक था और विष्णुप्रिया देवी उनका पत्नी जिनका उम्र केवल 16 साल की। ये 60 साल की माता और 16 साल की उम्र के पत्नी को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिया। प्रभुपाद जी को एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि क्यों चैतन्य महाप्रभु ऐसा किया। श्रील प्रभुपाद ने जवाब दिया, ये शिक्षा देने के लिए कि अगर तुम भगवान के लिए सब कुछ त्यागते हो तब कुछ सोचने का नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए तुम सोच छोड़ रहे हो तो भगवान उनको संभालेंगे। ये शिक्षा देने के लिए महाप्रभु 60 साल की उम्र की माता को और 16 साल की उम्र की पत्नी को छोड़कर संन्यास लिए थे। बल्कि चैतन्य महाप्रभु सची माता के साथ मिलन होने के पश्चात माता को बोला, मां मैं बहुत गलत किया, आपको छोड़कर मैं संन्यास ले लिया, तो ठीक है मैं संन्यास छोड़ के मैं घर वापस चला जाऊंगा। बल्कि आदर्श माता के रूप में सची माता बोला, नहीं जब तुम संन्यास लिए हो अब ये संन्यास आश्रम में ही रहो, नहीं तो लोग तुम्हारा बदनाम करेंगे, तो ऐसा काम कभी नहीं करना ताकि तुम्हारा बदनाम हो, तुम्हारा कुल की बदनाम हो। बल्कि महाप्रभु ने सची माता ने महाप्रभु को बताया कि तुम आस नजदीकी कहां रहो जहां तुम्हारा संवाद हमें मिल सके, तो महाप्रभु तय किया कि जगन्नाथपुरी में रहेंगे। तो जगन्नाथपुरी से बहुत सारे आदमी हर साल बंगाल में आते थे गंगा में नहाने के लिए, और बंगाल से भी बहुत सारे आदमी जाते थे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के अवसर पर। तो ऐसे सची माता को महाप्रभु का संवाद मिलता रहा जगन्नाथपुरी से। महाप्रभु संन्यास इसके पश्चात शांतिपुर से जगन्नाथपुरी की ओर यात्रा किया। जगन्नाथपुरी के पुरी से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक नदी है, तो वो नदी जब पार हो रहा था, नदी के पार में आया, तब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु पर संन्यास दंड लेकर तोड़ के नदी में फेंक दिया। महाप्रभु को बहुत गुस्सा हुआ कि एक तो तुम पहले मैं वृंदावन जा रहा था और वृंदावन से तुम उनको राह भुलाकर तुम लाया शांतिपुर में, और अब तुम मेरा संन्यास दंड तोड़ दिया, तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और ये कहकर चैतन्य महाप्रभु उन सबको पीछे छोड़कर अकेला ही दौड़ने लगा जगन्नाथ के मंदिर की ओर। जगन्नाथ मंदिर में आकर जगन्नाथ को दर्शन करते ही श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए, अचेतन हो गए। तो जगन्नाथ के जो पंडा थे वो लोग सोचा ये कोई पागल फैद आया होगा, तो उसको उनको संभालने को गया। बल्कि उस समय वहां का राजा का महापंडित सभा पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर थे। सार्वभौम भट्टाचार्य देखा एक नवीन सन्यासी इतना सुंदर, महाप्रभु का स्वयं भगवान सारे सौंदर्य का स्रोत है, तो उनका रूप कैसा है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो महाप्रभु को देखकर सर्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्य हो गए और देखा कि ये एक 24 साल के एक सन्यासी, ये देखते ही और देखा मूर्छित हो गया। तो बाद में सर्वभौम भट्टाचार्य देखा कि इनका शरीर में महापुरुष के सारे लक्षण प्रकाशमान है और ये जो भक्ति का चरम अवस्था में जो मूर्छा होता है ये है वो इसी स्थिति, लगता है कि मृत्यु हो गए। तो उन्होंने उनके नाक में कुछ रुई रखा तो देखा कि रुई धीरे धीरे ढल गया, तो तब पता चला कि ये उनका शरीर में प्राण है बल्कि चेतना का कोई प्रकाश नहीं है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने तब चैतन्य महाप्रभु को अपना मकान में ले गया, अपना घर में ले गया, जो उनके राजा के सभा पंडित थे, बहुत शानदार आदमी थे, सब उनको पहचानता था। तो उन्हीं के सहारा में महाप्रभु को अचेतन अवस्था में ही ले गए। पंडितानंद प्रभु मुकुंद गदाधर जब ऐसे महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते जब जगन्नाथ मंदिर में आया तो उनको पता चला कि हाँ, ऐसा एक नवीन सन्यासी जगन्नाथ को दर्शन करते ही अचेतन हो गए और उनको अद्वैत आचार्य अपना घर ले गए। तो महाप्रभु को देखने के लिए महाप्रभु के पार्षदों ने सब अद्वैत सर्वभौम भट्टाचार्य के घर गया, देखा महाप्रभु अचेतन। तो तब वहां कीर्तन शुरू किया, तो जब कीर्तन शुरू किया तब महाप्रभु का चेतना वापस आया। इसके पश्चात उन्होंने दर्शन करने को गया और सर्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को रहने का एक बहुत सुंदर आयोजन किया था, वहां नजदीक ही एक जगह में जिस जगह का नाम था गंभीरा, जहां महाप्रभु रहा करते थे काशी मिश्र का घर में। तो सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े पंडित थे और सर्वभौम भट्टाचार्य मायावाद के अनुयायी थे। मायावाद का मतलब क्या होता है पता है? मायावाद का मतलब होता है जो सोचता है कि भगवान निराकार है, अंत में निराकार ब्रह्म ही सब है, चरम आध्यात्मिक प्रकाश है ब्रह्म ज्योति, और ये जो रूप जो है ये रूप गुण का प्रकाश है, भौतिक जगत का गुण के कारण ब्रह्म में इस रूप का प्रकाश होता है। तो इस ये जो सिद्धांत है इसे मायावाद कहा जाता है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ये निर्विशेषवाद का अनुयायी थे। तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर उनको ऐसा लगा कि ये इतना सुंदर अल्प कम उम्र के नौजवान है, ये सन्यास नहीं रख सकेंगे, सन्यास आश्रम में सही रूप से नहीं रह सकेंगे, सन्यास से उसको स्खलन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। और चूंकि ये इतना भावुक है, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सन्यासी को गंभीर होना चाहिए और किसी के साथ बात नहीं करना चाहिए, पत्थर जैसा बनना चाहिए कोई। तो सर्वभौम भट्टाचार्य का जो जो भग्नीपति थे गोपीनाथ आचार्य, तो गोपीनाथ आचार्य ने गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को नवद्वीप से ही जानते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य भी नवद्वीप के ही रहने वाले थे। मैं कल बताया था सार्वभौम भट्टाचार्य कौन था, कल नहीं परसों बताया था शायद, याद है मथुरा मिथिला में न्याय का स्थान था, मिथिला था न्याय शास्त्र की अध्ययन की केवल मास्टर स्थान, जहां केवल मिथिला में चर्चा होता था न्याय शास्त्र का, और वहां के जो पंडित थे वो मिथिला से वो न्याय शास्त्र और कोई कहीं किसी को लेने को नहीं देते थे। तुम आके पढ़ सकते हो, बल्कि यहां के जो ग्रंथ है शास्त्र ग्रंथ इसको ले जा सकोगे। तो सॉरी सार्वभौम भट्टाचार्य ने पढ़ने को गया और क्या किया, अपना स्मृति में सारे शास्त्र को लेकर नवद्वीप चले गए और वहां जाके न्याय का अध्ययन का प्रवर्तन किया। तो जब मिथिला का पंडितों को ये बात पता चला तो उन्होंने कोई खूनी को भेजा उसको हत्या करने के लिए, उनको इतना गुस्सा हुआ, और जिसको भेजा था वो सार्वभौम भट्टाचार्य को देखते ही उनका ऐसा परिवर्तन हुआ मनभाव का कि वो सब बता दिया क्यों वो आया, क्यों उसको भेजा गया, और वो भी बताया देखिए मैं तो आपको छोड़कर ऐसे चला जा रहा हूं, बल्कि वो लोग शायद रोकेंगे नहीं, फिर और किसी को भेजेंगे, तो आप शायद ये अच्छा रहेगा आप यहां ना रहते और कहीं चले जाए। तत्पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य ने नवद्वीप से जगन्नाथपुरी चले गए थे और वहां के राजा महाराज प्रताप रुद्र के सभा में सभा पंडित बन गए। तो ऐसे इस कारण ही नवद्वीप जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तब नवद्वीप न्याय शास्त्र का पठन पाठन का एक पवित्र क्षेत्र बन गया था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े पंडित थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को यद्यपि वो नवद्वीप के थे बल्कि चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने नहीं जानते थे, मतलब 24 साल के पहले ही शायद उन्होंने नवद्वीप छोड़कर यहां आ गए थे पुरी में, बल्कि गोपीनाथ आचार्य को पता था। तो गोपीनाथ आचार्य बताया देखिए आप जिसको ये कह रहे हैं आप जानते हैं कौन है, ये स्वयं भगवान है। बल्कि सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं माना क्योंकि उनका तो भावना ये है कि ब्रह्म ही चरम है और अवतार जो है वो सद्गुण में सत्वगुण में ब्रह्म का स्थिति है, ब्रह्म का प्रकाश है। उनका मनोभाव ऐसा है कि ब्रह्म सद्गुण में है अवतार, रजोगुण में है जीव और तमोगुण में है वस्तु। तो जब जीव जब संन्यास ले लेते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं, इसलिए मायावादी लोग एक दूसरे को सन्यासी एक दूसरे को नारायण कह के संबोधन करते हैं। एनीवे दीज आर सम फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोलने लगे तो महाप्रभु ने बोला ठीक है ये हमारा शुभाकांक्षी है, इन्होंने अगर हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं तो उसको तो ग्रहण करना हमको उचित होगा समुचित होगा। तो महाप्रभु ने बताया ठीक है मैं आपसे वेदांत अध्ययन करूंगा, वेदांत पाठ लूंगा, आप वेदांत हमें सिखाइए। और सार्वभौम भट्टाचार्य भी बोले थे कि हम उसको वेदांत का जो मूल तत्व जो है वो हम सिखाएंगे, तब वो सन्यास आश्रम में सही रूप से पत्थर बन के रहेगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को शिक्षा देने लगे, वेदांत पढ़ाने लगे। एक दो तीन चार करके सात दिन गुजर गया, महाप्रभु बैठ बैठ के सुन ही रहे हैं। तो सात दिन के बाद सर्वम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा, कृष्ण चैतन्य मैं जो कह रहा हूं तुम समझ रहे हो? क्योंकि तुम तो को हां ना कुछ तो नहीं कर रहे। चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया, जो सूत्र जो आप पढ़ रहे हैं वो तो मैं समझता हूं, बल्कि सूत्र का जो भाष्य जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं समझता। सर्वम भट्टाचार्य बोला, ये तो बहुत अजीब बात है तुम कह रहे थे। सूत्र तो समझाने के लिए है व्याख्या या भाष्य, और तुम कह रहे हो कि तुम सूत्र समझते हो भाष्य नहीं समझते। तब सर्वम चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हां, ये सूत्र जो है ये स्वयं प्रकाशित है, और ये भाष्य जो आप कह रहे हैं वो उसका आवरण के रूप में उसका जो असल अर्थ है उसको ढांक रहा है, आच्छादन कर रहा है। तो सर्वम भट्टाचार्य बोला, कैसे? तो ऐसे इन दोनों में चर्चा होना शुरू किया। तब सर्वम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा, तो चैतन्य महाप्रभु उसका जो व्याख्यान दिया, सर्वम भट्टाचार्य आज भी एकदम आश्चर्य हो गया कि ऐसा व्याख्यान तो मैं कभी नहीं सुना। और उन व्याख्यान में क्या था, आप जो ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं ये ब्रह्म है ज्योति, बल्कि ये ज्योति का जो स्रोत है वो है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म है स्वयं भगवान। भगवान का आप जो कह रहे हैं कि ब्रह्म का, ब्रह्म से ही भगवान का रूप सत्व गुण में प्रकाशित होता है भौतिक जगत में, ऐसा नहीं। भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत ज्योतिर्मय है, वो ज्योतिर्मय जगत है ब्रह्म ज्योति, और वो ज्योति का जो उत्स है, स्रोत है, वो है स्वयं भगवान। क्योंकि ये ब्रह्म ज्योति है उनका अंग कांति, अंग छटा, उनका शरीर से जो ज्योति निकलता है वो है ये ब्रह्म। ब्रह्म है ज्योति, बल्कि परम ब्रह्म है स्वयं भगवान। भगवान सविशेष है, भगवान निराकार निर्विशेष है। और ये शिक्षा स्थापना करने के लिए, प्रतिष्ठा करने के लिए सर्वम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाया। ये श्लोक था कि आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूतः गुणो हरि। आत्मा राम मतलब आत्मा में जो आनंद आस्वादन कर रही है। आत्मा राम जो मुनिगण, आत्मा राम है जो आत्मा में ही आनंद को, परम आनंद को आस्वादन कर रहे हैं, वो लोग निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ का मतलब है निर्ग्रंथ का मतलब है जिनका कोई बंधन नहीं है। भौतिक जगत के सारे बंधन से जो लोग मुक्त हो गए हैं, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि, जबकि वो निर्ग्रंथ है, कोई बंधन नहीं है, ग्रंथि से मुक्त है। अपिच तत्रापि कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्ति इत्थं भूतः गुणः। वो लोग आत्माराम होते हुए भी आनंद, आत्मा में आनंद आस्वादन करने में मगन होते हुए भी जो लोग, जो निर्विशेषवादी का चरम लक्ष्य हैं, उस स्थिति में पहुंचने के पश्चात भी वो लोग भगवान के भगवान को भक्ति कर रहे हैं। क्यों? इत्थम भूत गुण हरि, भगवान का गुण ऐसी है कि जो भक्ति भौतिक जगत के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया जो लोग, उनको भी भगवान आकर्षण करते हैं। इसके द्वारा क्या स्थापना किया कि भगवान का भगवत भक्ति ही जीवन की और आध्यात्मिक अवस्था की चरम स्थिति है। तो उसके पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य को मन में बहुत कष्ट हुआ कि एक बालक के सामने उनको पराजय हो गया, जैसे केशव कश्मीरी का भी हुआ था। तो घर में दरवाजा बंद करके उन्होंने रोने लगा। तो गभीर रात में चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए, होकर षड्भुज रूप प्रदर्शन किया, दो हाथ में श्री रामचंद्र का धनुर्बाण और दो हाथ में श्री कृष्ण का मुरली और दो हाथ में दंड और कमंडलू सन्यासी का। तो ये षड्भुज रूप उनको दिखाया। ये षड्भुज रूप दर्शन करके सार्वभौम भट्टाचार्य का पता चल गया कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, जो द्वापर युग जो त्रेता युग में जो श्री रामचंद्र के रूप में आए हैं, द्वापर युग में कृष्णचंद्र के रूप में, कली युग में अब वही पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। इसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु का ख्याति जगन्नाथ पुरी में सारे और फैल गया, सब मंत्र पर दर्शन करने के लिए आना शुरू किया और महाप्रभु सबको लेकर कीर्तन करते रहे। महाराज प्रताप रुद्र के पास भी ये खबर गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। प्रताप रुद्र ने स्वीकार नहीं कर पाया, बोला महापुरुष है ये मैं मान सकता हूं, बल्कि भगवान मैं कैसे, भगवान जगन्नाथ है हमारे, भगवान के भक्त थे प्रताप पुत्र, बल्कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। इसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी छोड़कर दक्षिण भारत भ्रमण के तीर्थ भ्रमण के लिए निकल गए, दक्षिण भारत में तीर्थ पर्यटन कर रहे हैं। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म क्षेत्र में आए, वहां एक ब्राह्मण के घर में ठहरे और सारा रात ये भक्ति का, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण लीला का चर्चा हुआ और सुबह वहां से निकल गए। वहां पर एक ब्राह्मण था जिसका नाम था वासुदेव विप्र। वासुदेव का क्षय रोग हो, कुष्ठ रोग हो गया था, लेप्रसी। लेप्रसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुष्ठ ही बोलते हैं। कुष्ठ रोग हुआ था। तो कुष्ठ में क्या होता है, अंग गल जाता है, नाक मुख हाथ, और ये बहुत ही क्लेशदायक रोग है ये कुष्ठ रोग। परंतु ये वासुदेव बहुत बड़े भक्त थे भगवान का, यद्यपि कुष्ठ रोग से इतना कष्ट होता था, बल्कि भगवान के प्रति भक्ति उनका पूर्ण रूप से था। तो जब उनको खबर मिला कि भगवान स्वयं इतने नजदीक आए बल्कि उनका दर्शन नहीं कर पाया, तो ये उनको खबर मिला कि स्वयं भगवान आए हैं, तो उनको दर्शन करने के लिए गया उनका घर में, बल्कि जब वहां पहुंचा तो सुना कि चैतन्य महाप्रभु निकल गए हैं घर से। तो निकल गया मतलब और कभी वहां नहीं आएंगे, कहां जाएंगे कहां उनको कुछ ठिकाना नहीं रहा। तो ये सुनते ही वासुदेव पिप्र बहुत रोने लगा कि भगवान इतना नजदीक आया था पर मैं उनको दर्शन नहीं पाया, तो बहुत रोने लगा रोने लगा। तो महाप्रभु यद्यपि काफी दूर चले गए थे फिर वापस आए, वासुदेव विप्र को, और वासुदेव विप्र को जमीन से उठाया, उठाकर गले लगा लिया और महाप्रभु के स्पर्श मिलते ही केवल वासुदेव विप्र का कुष्ठ रोग का ही इलाज नहीं हो गया, निरामय नहीं हो गया, परंतु वासुदेव का एक दिव्य शरीर मिल गया, जैसे एक देवता की जैसा सुंदर गंधर्व की तरह एक सुंदर रूप उसको मिल गया। बल्कि वासुदेव क्या कहा उस समय, अच्छा था कि मेरा यह शरीर विकलांग था, शरीर में कष्ट था, तब यह शरीर के प्रति अनुराग नहीं होता था, अब जब यह सुंदर शरीर मिला अब तो ये माया का प्रभाव इसमें आ जाएगा। तो ऐसे महाप्रभु ने वासुदेव को उद्धार किया और उसके पश्चात महाप्रभु वहां से निकल गए। जब महाप्रभु जाते थे, जहां भी जाते थे, महाप्रभु एक ही निर्देश सबको देते थे, जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु, तुम मैं जब जो तुमको सुनाया, क्या सुनाया, महाप्रभु का शिक्षा क्या था, ये बहुत ही सरल शिक्षा था जो हमें मिल रहा है प्रभुपाद के माध्यम। कृष्ण भगवान है, हम सब जीव हैं, भगवान का अंश है, अंश होने के नाते हम सब भगवान के सेवक हैं, दास हैं, और भगवान का सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। कृष्णस्तु भगवान है और जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है श्री कृष्ण का नित्य दास। तो इस तरह महाप्रभु सबको शिक्षा देने लगे और बोला, ये जो शिक्षा मैं तुमको दिया तुम और सबको जाके ये सुना, कृष्ण ही भगवान है और हम सब उनके दास हैं और उनका सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु जब वापस आया, ये घटना प्रताप रुद्र को पता लग गया, महाप्रभु जब नहीं थे, ये इस इंसिडेंट बिकेम नोन टू किंग प्रताप रुद्र एंड देन ही रिकग्नाइज, ही एडमिटेड दैट दिस मस्ट बी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। उनका मन में ये विचार हुआ कि बहुत सारे महापुरुष कुष्ठ रोगी को इलाज किया है, वो कोई बड़ी बात नहीं, कुष्ठ रोग का इलाज बहुत सारे महापुरुषों ने किया है, बल्कि वो कभी भी अपने जो वो रोगी को अपने गले नहीं लगाए। भगवान ही केवल ऐसा कृपा प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे माता अपने पुत्र के लिए उसका माता का कुछ भी हेसिटेशन या हिचक नहीं रहा। मदर डज नॉट केयर अबाउट द डर्टी कंडीशन ऑफ अ चाइल्ड, व्हाई, because of her love. The child may be dirty, but it doesn't matter to the mother or the father. Because he is the Supreme Father, his affection for his children is so deep that he is not affected by that. So this is how King Prataparudra became attached to Chaitanya Mahaprabhu. Now when Chaitanya Mahaprabhu came back, King Prataparudra wanted to meet him. So the message was conveyed to Chaitanya Mahaprabhu that king wanted to meet him. But Mahaprabhu said the sannyasi doesn't meet with the king. Now, many of Mahaprabhu's very intimate associates were very close to the king. Many king's people were very close to Chaitanya Mahaprabhu. Like Sarup Damodar was the governor of the king in South India. King Prataparudra ke bahut sare parshadon ne Mahaprabhu ke bahut hi antaranga bhakt the. Jaise Sarup Damodar, Sarvam Bhattacharya, Kashi Mishra, Sikhi Mahiti. To unhone binti kiya Chaitanya Mahaprabhu ke. राजा को आप कृपा करके दर्शन दीजिए, बल्कि महाप्रभु ने बताया राजा को दर्शन करना सन्यासी का काम नहीं है। तब प्रताप रुद्र बोला तो ठीक है, तो मैं मेरा राज्य छोड़कर राजपाट छोड़ के मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा। फिर भी महाप्रभु ने उनको दर्शन देने को स्वीकार नहीं किया, बल्कि रथ यात्रा के बाद जब गुंडीचा के ओर जगन्नाथ का रथ जा रहा था तो महाप्रभु नाच रहे थे जगन्नाथ के रथ के सामने, और जब बालगंडी में रथ आया, रथ आकर बालगंडी में रोकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि वहां सबको जगन्नाथ को प्रसाद भोग निवेदन करने का अवसर मिलता है। उस समय चैतन्य महाप्रभु वो बगीचा में जाकर सो गया है एक पेड़ के नीचे, और उस समय महाराज प्रताप रुद्र एक साधारण गांव के रहने वाले के रूप में, क्या बोलते हैं, देहाती के रूप में वहां आकर महाप्रभु को पैर दबाने लगे, और दबा दबाते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवतम का गोपी गीत गा रहे थे, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रायत इंदिरा शश्वदत्रहि द्वैत दृश्यतां दिक्षुतावकाश तोई त्रिता शबाश तंग विचिन्नते। वैसे एक ही बार एक श्लोक कर गाते हुए जब नवम श्लोक में आया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापकम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणन्ति जी पूरी दा जाना। अर्थात हे भगवान, आपका कथा रूप जो अमृत है वो भौतिक जगत की जो क्लेशदायक स्थिति है उसको उपशम करता है, और जो महान कवि है, महान विद्वान है, महान महापुरुष है, भक्त है, उन लोगों ने ही केवल आपका ये महिमा कीर्तन करता, कभी भी ईड़ितम, और ये कथामृत श्रवण करने से श्रवण मंगलम, पूर्ण मंगल का उदय होता है, श्रीमदाततम, इसके कारण भक्ति रूप जो संपदा है वो संपदा मिलता है। जो परम संपद कौन है, सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ संपद कौन है, भक्ति श्री श्रीमदाततम। और भूभी गृहंती जो ये सारा दुनिया भर इस महिमा आपका नाम का महिमा प्रचार करते हैं वो है भूरी दाजन, वो है सर्वश्रेष्ठ दाता। ये सुनते ही श्री चैतन्य महाप्रभु झट से उठ गया और महाराज प्रताप रुद्र को गले लगा लिया और लगाकर बोलने लगा भूरिदा जना भूरिदा भूरिदा, जो ये भगवत महिमा भगवान नाम का प्रचार करते हैं दुनिया भर वो ही है सबसे महान दाता, वही है सबसे महान दाता। तो ऐसे श्री चैतन्य